स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग प्रवचन के सत्र में भगवान शंकराचार्य द्वारा विरचित प्रबोध सुधाकर नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में वैराग्य और बोध के अनंतर, वैराग्य और ज्ञान के अनंतर भक्ति का प्रकरण चल रहा है। भक्ति के प्रकरण में कुछ संशय आए थे, उन संशयों का समाधान ग्रंथकार कर रहे हैं। कृष्ण एक देशी दिखते हैं, आत्मा तो सर्वदेशी है, तो कृष्ण माने ये शरीर वाला कृष्ण या शरीर वाले आप ब्रह्म कैसे हो सकते हो? कृष्ण कहें या आप कहें कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर वाला जो भी है, उपाधि से युक्त जो है, वह सर्वव्यापक कैसे हो सकता है? कई युक्तियों से बताया कि आपकी भी उपलब्धि एक साथ कई जगहों पर होती है। जब हम यहां सोते हैं तो मुंबई में तो हम सोए हैं, हरिद्वार में हम स्वप्न देख रहे हैं। अब बताओ उस काल में आपकी अभिव्यक्ति, आपका प्राकट्य दो जगह है कि एक जगह है? कहां कहां है? मुंबई में मरे थोड़े हो, मुंबई में भी हैं, है नहीं, और हरिद्वार में भी हैं, दो दो जगह है। हां, मुंबई में सर्दी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है क्योंकि यहां आपका अंतःकरण सोया हुआ था, तो सोए हुए अंतःकरण के द्वारा यहां की परिस्थितियों का ज्ञान है। आपके बगल में कुत्ता के सो गया तो भी ज्ञान नहीं होगा कि कुत्ता सोया है। होता है, टेंटों में कुत्ते नहीं सो जाते क्या? अरे भाई, हम लोग अभी हरिद्वार में कुंभ में गए थे, हरिद्वार नहीं, वहां इलाहाबाद में, तो जानते हैं पूरा मेला ही कहां लगता है? वहां गंगा जी की रेत में लगता था, और सर्दी के समय लगता है जनवरी में, तो भाई सर्दी तो सबको लगती नहीं लगती है। हमें कुत्तों से थोड़ा उसकी बदबू पसंद नहीं है, अजीब सी दुर्गंध आती है, लेकिन रजाई लेके सोए, ऐसे सोए कि कुछ पता चला नहीं, सुबह उठा तो उसी में रजाई के भीतर घुसा हुआ कुत्ता है, तो क्या करे, उसको भगाया। उस समय ये भी एहसास नहीं होता कि यहां कौन है, कुत्ता है, अथवा सोते वक्त रजाई खिसक जाए तो सर्दी का एहसास होता है क्या? नहीं होता है, आपको नहीं पता चलता, मां रजाई डालती है लेकिन आपको नहीं पता है, तो उस समय बाहर की परिस्थितियों का कोई ज्ञान है? और उसी समय उसी काल में स्वप्न में वहां थे, कहां? हरिद्वार में, हरिद्वार में, या हरिद्वार में न पहुंचो, वहां पहुंच जाओ साउथ इंडिया, कहां पहुंच जाओ? तमिलनाडु में। इतनी गर्मी है, यहां तो सर्दी, इलाहाबाद में क्या थी? सर्दी, तमिलनाडु में क्या थी? इतनी गर्मी, पसीने पसीने हो रहे थे, करे भाई जल्दी जल्दी एसी चलाओ, बहुत गर्मी है। अब वहां की परिस्थितियों का आपको ज्ञान हो रहा है, उस परिस्थिति से आपको सुख दुख भी लग रहा है, तो आप बताओ दो जगह हो कि एक जगह हो? दो ही नहीं, और भी कई जगह हैं। जहां जहां अंतःकरण मिलता है वहां वहां आपकी अभिव्यक्ति हो जाती है, और जहां जहां अंतःकरण नहीं मिलता है वहां वहां आपकी अभिव्यक्ति होती नहीं है, लेकिन आपकी उपलब्धि कहां हो रही है? सर्वत्र, सब जगहों में हो रही है। आत्मा असंग है, वह सबके साथ एक जैसे व्यवहार करता है, कभी भी किसी में कम अथवा कभी किसी में ज्यादा नहीं है। अब हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है कि वह उससे कितना लेता है। बिजली सब जगह एक ही पावर की जाती है, अलग अलग पावर जा रही है, लेकिन एक बल्ब में इतना प्रकाश है और दूसरे बल्ब में बहुत 0 वाट का या 15 वाट का बल्ब है, तो बहुत कम प्रकाश है। तो अब इसमें बताओ बिजली का दोष है अथवा बल्ब का दोष है? तो ऐसे आपके अंतःकरण की कलमशता के कारण आपकी अभिव्यक्ति थोड़ा कम होती है, आपको कम लोग जान पाते हैं। और जिसका अंतःकरण जितना साफ होगा उसकी व्यक्ति, उसका प्रकाश उतने देश में फैल जाएगा। एक नियम भी है भाई, बल्ब 15 वाट का है लेकिन कलरलेस होवे तो उसमें ज्यादा प्रकाश होता है, और उसको लाल से रंग कर दो थोड़ा कम प्रकाश होगा, और नीला अथवा हरा से रंग दो तो क्या होगा, और कम हो जाता है। तो ये बल्ब के रंग पे डिपेंड करता है, बिजली में कोई कमी बेसी हो रही है। उसी प्रकार के आपके अंतःकरण में कितनी मात्रा में कलमस्ता है, कितनी मात्रा में वासनाएं हैं, उन वासनाओं के कारण आपका प्राकट्य, आपका प्रकाश बहुत जगह नहीं फैल रहा है। यदि आपका अंतःकरण भी कृष्ण के शरीर की तरह ठीक हो जाए तो आप भी ब्रह्म हो जाओगे। क्या बन जाओगे? ब्रह्म माने ब्रह्म अब भी हैं, लेकिन आप ब्रह्म न कहकर ईश्वर बन जाओगे। कह दो ब्रह्म न बनके क्या करो, सारा विश्व ही आपके पेट में समा जाए। सारा विश्व कहां समा जाए? मेरे उदर में समा जाए, मतलब सारा विश्व को ही, सारे विश्व में आपकी मय बुद्धि हो जाए तो आप भी क्या बन जाओगे, ईश्वर ही बन जाओगे। लेकिन बस अभी तो हमारी मय बुद्धि कहां है, इस शरीर में अटकी पड़ी है। दूसरे को हम मैं मानने के लिए तैयार है होते नहीं है। अब बहुत मैं माने तो मैं, मेरी बीबी और मेरा बच्चा, बस तीन तक सीमित, हम दो, हमारे एक दो, एक दो जो भी हो गए, हम दो हमारे एक आजकल हो गया है, पहले हम दो हमारे दो था, तीन था। चलो एक और प्रश्न आया है कि आत्मा तो अभोक्ता है, अब कृष्ण ने तमाम तरह के भोग क्यों भोगे? कहता कृष्ण ने कोई भोग नहीं भोगा, ये जो गोपिकाएं हैं वही भगवान के रूप को देख करके मोहित हो जाया करती थी, उन्हीं की अभिलाषा करती थी, काम से उन्हीं की विरह में व्याकुल हो जाया करती थी। और काम का भूत ही इतना भयानक होता है कि चलते बैठते काम करते खाना खाते, कृष्ण के सिवा उनको दूसरा कोई विषय सूझता ही नहीं था। नहीं, कृष्ण के विषय, कृष्ण के अलावा दूसरा विषय उनको कोई सूझता ही नहीं था, जानती नहीं थी। ऐसे असहनी विरह भ्रांति से अपने अपने पतियों को देख करके, वृक्षों को देख करके, पशु पक्षियों को देख करके, हरि अयम, यह हरि हैं, यह कृष्ण हैं, यह कृष्ण हैं, ऐसी भावना करके बड़े प्रेम से जाकर के उनका आलिंगन कर लेती थी। अब बताओ इसमें कृष्ण का आलिंगन किया या वृक्षों का आलिंगन किया? लेकिन भावना किसकी थी? उन वृक्षों के रूप में, उन पशुओं के रूप में कौन है? कृष्ण है। कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, कृष्ण तो स्वयं में तृप्त हैं। स्वयं में क्या है? तृप्त हैं। उनकी तृप्ति के लिए संसार के तुच्छ विषय की आवश्यकता है ही नहीं। उन्होंने अपने जीवन के व्यवहार से भी दिखा दिया। आप खुद वहां देखना, रुक्मिणी को कृष्ण ने चाहा या रुक्मिणी ने कृष्ण को चाहा? आप ध्यान देना, कृष्ण के न प्राप्ति की दशा में रुक्मिणी कह रही कि मैं आपके बिना मर जाऊंगी, अथवा कृष्ण कह रहे हैं तुम नहीं मिलोगी तो मैं मर जाऊंगा। बताओ, रुक्मिणी कह रही है, कृष्ण किसी के पीछे गए ही नहीं, कहीं भी नहीं गए। अपहरण किसी का उन्होंने ऐसा किया नहीं, उन्होंने जीवन की रक्षा के लिए कहा, भाई यदि मेरे मिलने से तुम्हें खुशी हो जाती है तो चलो मैं तुम्हें मिल जाता हूं, लेकिन तेरे मिलने न मिलने से मेरे अपने स्वरूप में तो कोई फर्क पड़ने वाला है ही नहीं। ए आप कैसे बोल सकते हो? तो कहा, स्वयं वेद व्यास ने ही खुद कहा है कि कोई गोपिका नाग बनती थी, कोई गोपिका कृष्ण बनती थी, कोई गोपिका पूतना बनती थी, कोई गोपिका कृष्ण बनकर के उनका स्तन पान करती थी, उनको कृष्ण के अलावा दूसरी कोई लीला दिखती, इसलिए निष्कर्ष निकाला, तस्माद निज निज दैतान कृष्णा आकारान ब्रज स्त्रियो वीक्ष स्वपर नृपति पत्नी नाम अंतर्यामी हरि साक्षात। तस्माद माने इस कारण से, पूरे ग्रंथ का निष्कर्ष, पूरे इस प्रश्न का निष्कर्ष, निज निज दैतान है, अपने अपने पतियों को ही कृष्णा आकार है, कृष्ण के आकार वाली ही समझ करके, कौन है ब्रज स्त्री है, ब्रज की स्त्रियां अपने अपने पतियों को क्या समझती थी, कृष्ण ही रूप समझती थी। हम लोग भी बताओ क्या समझते हैं पति को, बोलो भाई। अरे भाई शादी ब्याह तो आप लोग हुई है, पति को क्या समझते हो, पति किसका प्रतिरूप होता है, नारायण का। पति किसका प्रतिरूप है, नारायण का। और स्त्री किसका प्रतिरूप होती है, लक्ष्मी का। पत्नी किसकी प्रतिरूप है, हमारे यहां पत्नी भोग्या नहीं है, पत्नी एक लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी के रूप में ही भावना करनी चाहिए, किसके प्रति, स्त्री के प्रति। और पुरुष को जो पति बना है वह कौन सा रूप होता है, नारांग रूप ही होता है। तो सारा संसार ही जिससे आप मिलते हो वह सब के सब कौन है, नारायण रूप है। ऐसा वह ब्रज की गोपिकाएं देख करके किसको देखती हैं, स्व पर नृपति, अपने और पराये नृपति माने मनुष्य के पत्नियों को, और किसको भी, पत्नियों को देखते थे, पत्नियों पत्नी को भी देखते थे, तो पत्नियों को भी, किसको, पति अथवा पत्नी, पुरुष अथवा स्त्री, सबको क्या देखते थे, अंतर्यामी हरि साक्षात, सबके भीतर अंतर्यामी रूप से साक्षात नारायण ही विद्यमान हैं। तो हम जिससे भी मिलते हैं, जहां भी मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, जो भी व्यवहार हो रहा है, किसकी सत्ता सो रहा है, नारायण की सत्ता सो रही है। तो हम सब व्यवहार किससे कर रहे हैं, मिलते जुलते किससे हैं, नारायण से। ऐसा करना एक बार देखना, एक ज्ञान की एक अवस्था है। एक बार मैं किसी के यहां था, 7-8 दिन रहा गांव में, अपना गन्ना तोड़ता था, खाता था, बड़ा आनंद रहा, पूरा परिवार प्रेम से रहा। फिर वहां से गया तो उन्होंने कहा, स्वामी जी आपकी बड़ी याद आ रही है। ये स्वाभाविक, भक्त लोग तो बोल ही देते हैं। तो मैंने उनको एक पत्र लिखा, हम कहा भाई मैं तुमसे दूर हूं कहां, मैं तुमसे दूर हूं कहां, खेत में जाना तो गन्ने के रूप में मैं ही लहलहा रहा हूं, हिल रहा हूं, सरसों के खेत में पीले पीले फूल खिले हुए वह मेरी अभिव्यक्ति हो रही है, यहां तक तुम्हारे इन वस्त्रों के रूप में मैं ही तुम्हारे गले भी मिला हुआ हूं। ध्यान देना, तुम्हारे इन वस्त्रों के रूप में भी अभिव्यक्ति किसकी हो रही है, मेरी अभिव्यक्ति हो रही है, इन वस्त्रों के रूप में तुमसे मैं कभी दूर हो ही नहीं सकता हूं। यहां तक मैंने कहा उसकी भैंस थी, हमने कहा तेरी भैंस के रूप में मैं ही बैठा हुआ रभा रहा हूं, आवाज दे रहा हूं। तो जितने रूप हैं वह सारे रूप किसके हैं, उस परमात्मा के, उससे जुदा आप हो ही कहां सकते हो, आप अलग हो ही नहीं सकते हो भाई। और ध्यान देना, जो गोपिका है पहले कृष्ण को एक नाम रूप में देखती थी, अब कृष्ण के विरह में व्याकुल हुआ करती थी, हा कृष्ण मुझे छोड़ के चले गए। उद्धव जी के आने के बाद गोपिकाओं का रोना ही क्या हुआ, बंद हो गया। भले भागवत कथा वक्ता लोग उद्धव की ज्ञान की गुदड़ी बना करके उद्धव का तिरस्कार करा देते हैं, लेकिन गोपिकाओं, किसी भी गोपिका ने उद्धव का तिरस्कार नहीं किया। यदि उद्धव का तिरस्कार किया होता तो वह तिरस्कार किसका माना जाता, कृष्ण का माना जाता, स्वाभाविक है। भाई देखो, मेरे यहां परिचित है, मैं किसी को आपके यहां भेजूं, आपने उसका तिरस्कार कर दो तो उसका तिरस्कार किसका तिरस्कार माना जाएगा, मेरा तिरस्कार माना जाएगा। तो वो तो उद्धव के प्रतिनिधि बनकर, वो कृष्ण के प्रतिनिधि बनके कौन गए थे उद्धव। यदि उद्धव की बात न सुनी होती गोपिकाएं, या उद्धव को तिरस्कृत की होती कि अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो, तो मैं यही हूं जहां हूं ठीक हूं, तो बताओ उद्धव का तिरस्कार होता नहीं होता। तो उद्धव का तिरस्कार किसका तिरस्कार माना जाता, कृष्ण का। इसमें गोपिकाओं की कोई बड़प्पन था कि नीचतापन था, मतलब कृष्ण का अपमान कर देती तो गोपिकाओं का बड़प्पन था, वो तो नीचतापन था। इसलिए गोपिकाओं ने उद्धव का अपमान नहीं किया है, उद्धव की बात को बड़े ध्यान से सुना है और सुन करके उसको अपने जीवन में उतारा है। और उतारा क्या उतारा है कि वे गोपिकाएं जो कृष्ण को एक रूप में देखती थी, वही गोपिकाएं कृष्ण को सारे रूप में देखना शुरू कर दिए। वृक्षों के रूप में, कदंब के रूप में, गाय के रूप में, बछड़े के रूप में, कालिंदी के रूप में, यहां तक उस जमीन के रूप में भी कौन दिखाई देता था उनको? कृष्ण। मैं ही सारा ब्रज बन गया था। इसके कारण ज्ञान के बाद भी यही तो होता है, और क्या, कि सारा संसार ही विष्णुमय दिख जाए, सारा संसार ही एक परमात्मय दिख जाए। तो परमात्मा से एक क्षण भी आप अलग होकर रखना चाहें तो बस आपका एक गलत भ्रांति है कि हम परमात्मा से अलग हैं या परमात्मा मेरे से अलग है। हम भी इसी भ्रांति में रहे हैं, ऐसी बात नहीं। मैं भी सोचता था सातवें आसमान में जाकर के भगवान से मिलूंगा, यूं ध्यान करके। कभी कभी ऐसी सीरियल आते हैं योगा वोगा वाले, यहां से प्राण निकल करके यूं जाता है, जाकर के भगवान के लोक में जाकर के निवास करता है, वो कहता है। हम भी सोचते थे ध्यान करके यहां से जाकर के यूं इस सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में घुस जाऊंगा, है नहीं, फिर दूसरे शरीर में जाकर के देखूंगा क्या मजा मिलता है। रमन महर्षि तो बहुत सीधी से बात करते थे, भाई दूसरी जीवात्मा को यदि उसी शरीर में सुख मिला होता तो वह जीवात्मा उस शरीर को छोड़ क्यों जाता? अब उस शरीर में तुम घुस भी जाओगे तो तुम्हें क्या सुख, वह शरीर रहने लायक रहा होता तो वह जीवात्मा उस शरीर को छोड़ जाता क्या? तो दूसरे शरीर में घुस भी जाओगे तो क्या मिल जाएगा? और अब ज्ञान के बाद लगा कि घुसने की आवश्यकता नहीं है, सारे शरीर में मैं ही तो घुसा हुआ हूं। सारे शरीरों के रूप में कौन घुसा हुआ है? मैं ही तो घुसा हूं। अंतर्यामी रूप से मेरी व्यक्तित्व, जो अंतर्यामी मैं इस शरीर में घुस करके इस शरीर के सारे व्यवहारों का क्रियान्वित कर रहा हूं, वही अंतर्यामी दुनिया के सारे शरीरों में प्रवेश करके उस शरीर को भी उसके व्यवहार के योग्य बना रहा है नहीं बना रहा, मेरे को बता दो। तो आप बताओ कहां नहीं हो, मेरे को बता दो। लेकिन बचपन में हम आपसे बताए थे, नहीं बताए थे, एक बार मैं जंगल गया, जंगल गया तो कहा आज आसमान को छू के दिखाऊंगा, क्या करूंगा, आसमान को छू के दिखाऊंगा। तो आप लोगों ने आसमान छुआ ही नहीं छुआ है? कब छुए थे? ऊपर हाथ करके, एक कह रहे ऊपर हाथ करके छुए हैं, बताओ आप लोग भी छूते हो क्या आसमान ऊपर देख करके? हम भी आपकी तरह ऊपर हाथ करके छू रहे थे आसमान। इन जाकर के थोड़ी देर बाद क्या हो गया है, कड़ाही की तरह क्या हो गया है, उल्टा रखा हुआ है ना, छत की तरह उल्टा रखा है। तो हमने सोचा एक किलोमीटर तो दूर दिख रहा है, जाके छू के आते हैं। एक किलोमीटर गया, दो किलोमीटर गया, जितनी दूर जाऊं उतनी दूर आसमान आगे बढ़ता जाए, कभी छू ही नहीं पाया। सही बताऊं सात आठ में था, मैं डर के वापस आ गया, जंगल का मामला था, कहीं जंगली सुअर उगर मिलते हैं तो वापस आ गया। लेकिन जब से वेदांत की कथा सुना, अब वेदांत की कथा के सुनने के बाद ये पता चल गया कि आसमान तो सर्वव्यापक है, उसको देखने के लिए, उसको छूने के लिए यूं भी नहीं करना पड़ता है। आप लोग यूं कर ले, अभी भी आसमान में क्या हो, छुए छुआए हो, ओतः प्रोत हो, आगे आसमान पीछे आसमान, आजू बाजू आसमान में ही ओतः प्रोत हो, आसमान आसमान, उस आसमान माने आकाश से भी व्यापक जो परमात्मा है वह कहां नहीं, ये बताओ, वो सब जगह है। अब बस उसको जहां जहां अंतःकरण मिल जाता है वहां वहां उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है, और जहां जहां अंतःकरण नहीं मिलता है वहां वह अव्यक्त रूप से प्रकट होता है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं या जो दूरध्वनि आती है वह सब जगह मौजूद है, नहीं मौजूद है, लेकिन जहां जहां ट्रांजिस्टर का वो मीटर लगा दोगे वहां वहां वह आवाज सुनाई देगी, और जहां जहां ट्रांजिस्टर नहीं है वहां आपको आवाज कोई सुनाई नहीं देगी। या आजकल उसका सिस्टम ले लो, सोलर एनर्जी, सोलर सौर ऊर्जा, अर्थात वह ऊर्जा सब जगह है कि नहीं है, लेकिन जहां जहां वो इंस्ट्रूमेंट मिलेगा वहां वहां ऊर्जा लेता हुआ चला जाएगा, और कार चलती जाएगी, कैलकुलेटर काम करता जाएगा, आपका मोटर चलेगी, बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा, किससे? अब बताओ उन इंस्ट्रूमेंट के आने और जाने से क्या ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती है क्या? बोलो भाई नहीं जाती ना, ऊर्जा तो सब जगह एक समान है ना, तो वह आत्म रूपी ऊर्जा इस शरीर के आने जाने से आती जाती नहीं है, वह तो सर्वव्यापक सब जगह है और बल्कि उसी ऊर्जा की सत्ता से शरीर है। अब ये शरीर भी उसी ऊर्जा रूप है, यदि वह ऊर्जा न होवे, ऊर्जा माने हीट न होवे, तो यह शरीर रहेगा कि शरीर गल के पानी बन जाएगा, शरीर की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो शरीर भी क्या है, ऊर्जा रूप है, आपने सुना नहीं सुना है, सारा विश्व ही एनर्जिक है, साइंस वाले बताते हैं सारा विश्व ही क्या है, एनर्जी रूप ही है, एनर्जी के अलावा विश्व की कोई सत्ता है ही नहीं। इसको अब 224वें श्लोक से बता रहे हैं, इस पूरे का निचोड़। परमार्थ तो विचारे गुण तत् मधुरत्व दृष्टान्तात् न स्वरम अपि नर देहम परमात्मा कारताम याति। अब व्यवहारिक विचार करें या परमार्थिक विचार करें, कौन सा विचार करना है, हमें क्या अच्छा लगे, व्यवहार में तो आप हमसे ज्यादा कुशल हो, है नहीं, व्यवहार ही बताना होता तो आपसे हमें सीखने के लिए आना पड़ता, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, किससे कपट करना चाहिए, किसको बेवकूफ बनाकर के अपना काम सीधा करना चाहिए, ये सारी कला किसको आती है, आपको आती है, तो व्यवहार में क्या सिखा सकता हूं बताओ। अब व्यवहार हमें इतना बढ़िया आता तो मैं भी आपके संसार में जाके ना व्यवहार करता, हमें व्यवहार आता नहीं था तभी तो संसार से भाग के इधर आ गए, सही है नहीं, तो क्या विचार करना है, व्यवहार सीखने के लिए संसार में जाना, अब परमार्थ सीखने के लिए कहाँ आना, प्रेमपुरी में आना है, तो प्रेमपुरी में परमार्थ सीखना है, तो परमार्थ विचारे, यदि परमार्थ रूप से आप विचार करो तो क्या विचार करें, गुड़ अतत मधुरत्व, गुड़ और उसमें रहने वाली मधुरता, गुड़ और उसमें रहने वाली मधुरता अलग अलग है या एक ही है, मधुरता को निकाल लो तो गुड़ बचेगा कि नहीं बचेगा, इस दृष्टांत के द्वारा यह समझना, न स्वरम अपि नर देहम, यह शरीर विनाशी होता हुआ भी वास्तव में परमात्म रूप ही है, यह शरीर परमात्मा से पृथक है ही नहीं। एक गुड़ का दृष्टांत दिया, अब भगवान भाष्कर ने एक दूसरा दृष्टांत दिया, वही बताया, यावत पिंडो गुड़ से स्फुरत, गुड़ का जितनी बड़ी गली है सबके सब मधुरमा ही है, मिठास ही है, मिठास अलग है ही नहीं, यावत कर्पूर पिंड परिणमती, जितना के जितना कपूर का पिंड है, कपूर की गली है, सब के सब आमोद एवयत्र, सुगंधि ही है, सुगंधि का ही क्या हुआ है, सॉलिडिफाई ठोस करण हो गया है, क्या कपूर की गली, मधुरमा सूक्ष्म है कि स्थूल है, मिठास सूक्ष्म है, तो मधुरमा का ही सॉलिडिफाई स्थूलीकरण क्या हो गया है, गुड़ की पूरी गली, उसी प्रकार से विश्वम यावत विभाति, जितना का जितना सारा संसार दिख रहा है, कौन सा संसार, द्रुम नगर, द्रुम नग नगर आराम चैत्य अभिरामम, कहते हैं कि पेड़ पहाड़ नगर बगीचा जो कुछ भी दिख रहा है सब के सब चैतन्यम एकम प्रविकसति, सब के सब चैतन्य मात्र ही हैं, क्योंकि ये सब लय हो जाएंगे तो अंत में एक चैतन्य ही सत्ता बचेगी, दूसरी कोई सत्ता, तो इसलिए चैतन्य के ही ऊपर यह सब अव्यक्त हो रहा है, जैसे समुद्र में जितना भी कुछ दिख रहा है वह सब क्या है, मछली भी जल है, वो व्हेल मछली भी इतनी बड़ी हो भी क्या है, घोंघा भी क्या है, भले ठोस दिख रहा है, घोंघे की खोल क्या दिखती है, ठोस, कछुए का जो पीठ दिखती है कितनी मजबूत, लेकिन वो भी क्या है, जल रूप है, जल की सत्ता के सिवा दूसरी कोई सत्ता वहां है ही नहीं, ऐसे सारे विश्व में जो कुछ दिखता है वह कौन है, चैतन्य मात्र ही है, अतः जग कहां बचाया बताओ, कहीं जग दिख रहा है, कहो फिर भी दिखता है, तो बताया है कि अपरोक्षानुभूति आपने भी पढ़ा, कौन सा ग्रंथ? अपरोक्षानुभूति। सायंकाल चल रहा था, तो रज्जु अज्ञानात रस्सी तत्व का ज्ञान हो जाए तो एक क्षण में ही जैसे वहां सर्प प्रतीत हो जाता है। अब सर्प प्रतीत हुआ, काला है, इतना मोटा है, इतनी ज्यादा उम्र का है, जहरीला है, तमाम उसमें हम कल्पना कर लेते नहीं कर लेते। उसी प्रकार से उस चैतन्य रूप परमात्मा का ज्ञान न हो जाने से उसके ही ऊपर यह विश्व स्फुरित हो जाता है, अन्यथा यदि उस चैतन्य का ज्ञान हो जाए ना तो आपको विश्व दिखाई देगा नहीं। उस समय आप भी जनक जी की भाषा में बोल दोगे, अरे अभी अभी तो मैंने संसार देखा था, क्वनीतम क्वागतम, यह संसार कहाँ चला गया, कौन इस संसार को ले गया, अभी अभी तो मैंने सारा संसार दिखा था, अब मेरे को कोई संसार दिखता। लेकिन यह स्थिति कब आएगी? परमार्थत विचारे, ऊपर ऊपर नहीं, परमार्थ रूप से विचार करोगे तो। जब तक परमार्थ रूप से विचार नहीं करोगे तब तक तो भाई ये सब दिखेगा ही दिखेगा। कल वाले भी दृष्टांत में मैंने बताया था, जब ब्रह्मा जी भी परमार्थ रूप से विचार नहीं किए तो उनको कितनी सृष्टि दिख रही थी, जिन ग्वाल बालों को गायों को छिपाए थे वहां भी देखते थे, यहां भी देखते थे, लेकिन उनको दिखाई नहीं दिया। जब थोड़ा आंख बंद करके ध्यान से देखे तो सारा विश्व ही उनको क्या दिख रहा है, कृष्णमय दिख रहा है, विष्णुमय दिख रहा है। तो परमार्थ रूप से विचार करो तो जितने वस्त्र दिखते हैं वह क्या दिखेंगे, बोलो भाई, सूतमय। क्या दिखेंगे? सूतमय। ऐसे सारा विश्व क्या दिखेगा? ब्रह्ममय। कैसे दिखेगा महाराज जी, हम यकीन नहीं होता है। तो एक यकीन का एक उदाहरण है, सुना नहीं भाई, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ये परमार्थ विचार है, कहानी चुटकुला नहीं, समझना है। उपादान प्रपंचस्य ब्रह्मणो अन्यत्न विद्यते, इस सारे संसार का उपादान कारण है, कौन है? ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। क्या है उपादान माने? क्या हुआ? जिसके बिना उस वस्तु की सत्ता न रह सके वह उसका उपादान कारण है। उपादान कारण किसको बोलते हैं? जिसके बिना उस वस्तु की सत्ता न रहे वह उसका क्या है? उपादान कारण है। जैसे घड़ा बना है तो घड़ा किससे बना है? मिट्टी से। तो घड़े का उपादान कारण कौन है? मिट्टी है। तो मिट्टी को निकाल लो तो घड़ा बचेगा? नहीं बचेगा ना। ऐसे ही स्वप्न में जितना संसार दिखता है वह किसके ऊपर दिखता है? मेरे ऊपर। तो मुझे स्वप्न से बुला लो तो स्वप्न की बीवी, स्वप्न का बच्चा, स्वप्न का पहाड़, स्वप्न की दुकान, कुछ बचेगी कि सब समाप्त हो जाएगी? तो मेरे को निकालते ही स्वप्न गायब। इसका मतलब क्या हुआ? मैं ही स्वप्न में सब कुछ बना था, मैं ही स्वप्न में क्या बना था? सब कुछ बना था। ऐसे जितना विश्व दिख रहा है यह सारा का सारा विश्व ब्रह्म से अतिरिक्त है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म को निकाल लो तो संसार कुछ बचेगा ही नहीं। तस्मात सर्वम प्रपंचो एयम ब्रह्म एवास्ति न चैतरतः, इसलिए यह सारा का सारा प्रपंच ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्म क्यों है? कहते ब्रह्मगः सर्वभूतानि जायन्ते, ब्रह्मगः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः तस्मादेतानि ब्रह्मेव भवन्ति इति अवधारयेत्। ब्रह्म रूप परमात्मा से ही यह सारा संसार पैदा होता है, उसी में ही स्थित है, अंत में उसी में ही लय हो जाता है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। सर्वम खल इदम ब्रह्म। अब भी नहीं समझ आया, उदाहरण से समझाए। वही स्वर्णात जायमानस्य, सोने से पैदा हुआ जो भी गहना होगा बताओ सब क्या होगा? अंगूठी होवे तो, मुकुट होवे तो, और पायल होवे तो, सब क्या है? फिर भी हम जो सर पे पहनते हैं उसको उत्कृष्ट गहना मान लेते हैं, और जो कमर में पहनते हैं उसको मध्यम गहना, और जो पांव में पहन लेते हैं उसको निकृष्ट मान लेते हैं, लेकिन सब एक दृष्टि से देखा जाए क्या है, लेकिन सोना भगत को नहीं दिखाई देगा, तो दिखता है। स्वामी जी कथा सुनाते हैं ना खंडानंद जी महाराज कि एक भगत है, वो तो महात्मा लोग सुनाते हैं, एक भगत है, चूहा और गणेश जी को ले गया दुकान पे बेचने के लिए, तो चूहे का दाम 10,000 रुपये और गणेश जी का दाम 5,000 रुपये। उसने कहा महाराज कुछ तो शर्म करो, गणेश तो उसके अधीन में, वो चूहा तो उसके अधीन रहने वाली उसकी सवारी है, और गणेश तो सर्वसमर्थ राजा हैं, उनकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, सवारी की कीमत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्या तुम्हारी दृष्टि में गणेश होंगे ये सोना होगा, ओ चूहा होगा, मेरी दृष्टि में तो क्या दिखता है, सोना अथवा चांदी के अलावा दूसरी कोई चीज दिख ही नहीं रही है। तो बता सोने का बना हुआ हर गहना क्या होगा, तो आप सब कहां से पैदा हुए बोलो भाई, ब्रह्मगो जायमानस से, ब्रह्म से पैदा हुआ सबके सब क्या हो जाएगा, ब्रह्मत्वम च भवेत, सबके सब ब्रह्म ही रूप होगा, ब्रह्म से पृथक होगा नहीं। हम लोग ऐसे मजाक बस बोल देते हैं भाई, मंडलेश्वर का चेला मंडलेश्वर मंडलेश्वर का चेला क्या होगा, किसी मंडलेश्वर से कम थोड़े होगा, उसका बेटा तो वही रूप होगा, उससे अलग होगा बताओ। इसलिए एक एक क्या बताएं, ब्रह्मेव सर्वनामानि, जितने नाम है ना सारे नाम किसके हैं, परमात्मा के, जितने नाम है सारे नाम है, रूपांगी जितने रूप हैं सारे रूप किसके हैं, परमात्मा के, विविधान च अनेक प्रकार के जितने रूप हैं सबके सब परमात्मा के हैं, अकर्मांगी अपच समग्रांगी, जितने भी दुनिया में कर्म हो रहे हैं वह सारे कर्म भी किसकी सत्ता से हो रहे हैं, उस परमात्मा की सत्ता से हो रहे हैं, ऐसा श्रुति का भी बार बार कथन होता है। एक फाइनल उदाहरण दिया, गृह मांगे घटे यतवत, घड़ा पकड़ो तो न चाहते हुए भी आपको मिट्टी पकड़ में आ जाएगी, क्या पकड़ में आएगी, घड़े को हमने पकड़ा, गृह मांगे घटे यदवत, जिस प्रकार से घड़े को पकड़ा तो मृतिका भांति वह बलात, जबरदस्ती न चाहते हुए भी आपको मिट्टी पकड़े में आ जाएगी, उसी प्रकार से दीक्ष मांगे प्रपंचे अपि ब्रह्म एव आभाति भासुरम, इस सारे प्रपंच को देखते हुए भी आपको न चाहते हुए भी परमात्मा दिखाई दे जाएगा, इसलिए उस परमात्मा को देखने के लिए अब आंख बंद करने की आवश्यकता रही गई क्या, आंख खुली है तो बंद है तो दोनों अवस्थाओं में कौन अनुभव में आ रहा है, वह परमात्मा ही अनुभव में आ रहा है। एक फाइनल, यथैव मृन्मय कुंभ, जिसे घड़ा मृन्मयी है, तद्वत देहो अपि चिन्मय, उसी प्रकार से शरीर भी क्या है, चिन्मय है, चैतन्यमय है। फिर महाराज ये चैतन्य है, ये जड़ है, इसी कल्पना कहां की गई, कहते आत्मा अनात्मा का जो विवेक किया गया है ना, अबुधई अज्ञानी लोग व्यर्थ ही ये विभाग किया करते हैं, ज्ञान में कोई भेद है ही नहीं, ज्ञान में एक ही सत्ता है, कौन सी सत्ता, परमात्मा की सत्ता। न समझ में आवे तो एक उदाहरण आपके सामने मौजूद है, अखबार खूब पढ़ते हो आप लोग, क्या पढ़ते हैं, अखबार, अखबार में भगवान भी दिखते हैं, उनका पांव भी दिखता है, देख के क्या करते हैं, नमस्कार भी दिखते हैं, वहां एक कोई सुंदर स्त्री की भी तस्वीर दिखती है, नहीं दिखती, अब बताओ चाहे सुंदर स्त्री को पकड़ रहे हो चाहे भगवान को पकड़ रहे हो, किसको आपने पकड़ा, पेपर को पकड़ा कि भगवान को पकड़ा, आप सही बताना, पेपर ही तो पकड़ा, तो दुनिया में कुछ भी व्यवहार कर रहे हो वह किसके साथ कर रहे हो, उस परमात्मा के साथ व्यवहार कर ले, बस बुद्धि निश्चय कर लो, बहुत कुछ नहीं जानना है। संसार में जड़ता नाम की कोई चीज है, तो एक जड़ की कल्पना मात्र की गई है चैतन्य तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हमारी दृष्टि ना वहीं उलझी हुई है, जड़ में उलझी हुई है, जड़ के अधिष्ठान में उलझी नहीं है, अध्यस्त में उलझी हुई है, जो अध्यस्त वस्तु जिस अधिष्ठान पर टिकी है उस अधिष्ठान में हम जाते ही नहीं हैं, इसे जाने के लिए उसको कहा ये नहीं ये नहीं ये नहीं, अब बाद में कह दिया गया सब वही है, पहले नेति नेति करके कहा गया यह नहीं यह नहीं यह नहीं, यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं, अब बाद में क्या बता दिया गया, सब कुछ आत्मा ही है, जिसको हटाया था सब कुछ क्या है, आत्मा ये यहां हटाने वाली कोई वस्तु है ही नहीं, सब कुछ वही है। इसको अखबार वाला उदाहरण लेना आप लोग बहुत ध्यान से लेना। कौन सा उदाहरण? अखबार। वो बताया था ना मैंने एक बार, अखबार में कोई मुरमुरा रख के खा रहा था। क्या कर रहा था? मुरमुरा होता ना गुजरात में, नमकीन भजिया या कुछ भी। तो क्या हुआ कि जिस पेपर में रखा था वहां जूते का एड था, नीचे क्या था? हमने कहा देख कुछ तो श्रम करो, जूते पे रख करके क्या कर रहे हो तुम, मुरमुरे खा रहे हो? बता दी जूता नहीं, ये क्या है? पेपर है। हमका यार तब तुम ज्ञानी हो गए, तुम क्या हो गए? ज्ञानी हो गए नहीं हो गए? अब वही व्यक्ति, ध्यान देना, वही व्यक्ति उसी अखबार में एक भगवान की तस्वीर बनी हुई थी, अब उसको क्या कर रहा था? नमस्कार कर रहा था। हम कहा भाई ये क्या कर रहे हो? कहा भगवान को क्या कर रहा हूं? भगवान को नमस्कार कर रहा है, अखबार को नमस्कार कर रहा है, किसको कर रहा है? अथवा उसी अखबार में एक तस्वीर दिख रही है सुंदर सी, उसको छू रहा है, उसको उलट पुलट कर देख रहा है, अब उस अखबार को देख रहा है या उस कन्या को देख रहा है? बताओ किसको देख रहा है? अब नहीं, अब कन्या में उसकी दृष्टि उलझ गई है, अब उसको अखबार नहीं दिखता है, अब अखबार नहीं दिख रहा है। जूते में तो उसको क्या दिखा था? अखबार दिख गया, लेकिन उसमें कन्या की तस्वीर बन गई, तब क्या दिख रहा है उसको? हे भगवान क्या करें। अरे एक दृष्टि तो बनाओ, या तो अखबार ही देख लो या तो कन्या ही देख लो। तो क्या दिखना चाहिए? पक्का? उसी प्रकार सारे विश्व में क्या देखना चाहिए? एक ब्रह्म। अब यहां ये लड़की है, लड़का है, काली है, गोरी है, पशु है, वृक्ष है, ये जल है, ये थल है, सारी बुद्धि को हटा करके क्या देखो? जैसे एक अखबार में सारी तस्वीरें बन जाती हैं, आसमान की भी, जल की भी, बनती ना बनती है, जमीन की भी, तमाम वृक्ष पशु पक्षी, ऐसे यह सारा का सारा संसार उस चैतन्य में ही चित्रित मात्र कल्पित है, वास्तविक उसकी सत्ता है ही नहीं। है तो एकमात्र सत्ता किसकी? चलो आप लोगों नमस्कार, आपने देख लिया, ये बहुत बढ़िया, लेकिन भूलना नहीं प्रेमपुरी के बाद भी। किम पुनः अनंत सक्ते लीला बपु ईश्वरस्य इह कर्मान्य अलौकिकानि स्वमाया विदधतो हरि नृहरे। पुनः माने फिर से, इह माने यहां पर, स्वमाया अपनी माया से, किसकी? अपनी माया से अलौकिक अलौकिकानि कर्माणि, अलौकिक कर्म को विदधत माने करने वाले, अपनी माया से अलौकिक कर्मों को करने वाले अनंत शक्ति संपन्न ईश्वर के लीलामय मनुष्य शरीर की बात ही क्या है? जो लीला से उस परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर को धारण किया है, किससे? लीला से, के लीला से तो धारण किया है, लीला बस, नाटक बस, इस शरीर को जो धारण किया है उनके लिए कहना ही क्या है? वे सभी रूप में परिणत हो गए हों, विश्व के रूप में परिणत हो गए हों, उनके लिए इसमें आश्चर्य की बात है ही नहीं। क्यों नहीं आश्चर्य की बात है? ये जानते हैं, एक सामान्य व्यक्ति भी अज्ञान की अवस्था में, सपने में, स्वप्न के सारे संसार को पैदा कर सकता नहीं कर सकता? बताओ। तो स्वप्न में दिखा हुआ सारा संसार क्या है? उसी में है, कुछ से अलग है। तो ऐसे अनंत शक्ति संपन्न हम लोग भी किसके सपने हैं भाई? यही ब्रह्मा जी के सपने हैं, हम लोग किसके सपने में घूम रहे हैं? यदि इसे भक्ति की दृष्टि से विचार करो, इसे ये संसार जो दिख रहा है मेरा अपना सपना ही है। ये संसार दिख रहा है वो किसका सपना है? ईश्वर का। मानो वेदांत में एकदम गहरी में आ जाओ कि मेरा अपना ही संकल्प है, मेरे ही अपने संकल्प में कि भोग की वासना थी, तो संकल्प मेरी संकल्प ने स्त्री का रूप धारण करके मेरे सामने प्रकट हो गई, पुत्र की कामना थी, दुकान। अच्छा बताओ महात्मा बनना किसका संकल्प था? चलो छोड़ो हमारा, हाँ बताओ, माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके इंजीनियर बनाया, बेटा कमाएगा, शादी करेगा, बढ़िया महल बनवाएगा, हाँ, घर में, गांव में उस समय कहते थे अम्पाला चलती थी उस समय, पहले बहुत बढ़िया गाड़ी कम थी, अम्पाला थे गांव में जो, अरे उस समय उसी का स्टैंडर्ड था भाई, किसी समय अम्बेसडर का एक स्टैंडर्ड था, आज अम्बेसडर आपकी क्या हो गई है, कबाड़ा हो गई है। तो उसमें जो नाते रिश्तेदार घर में आते थे ना, तो गांव में जानते गाड़ियां कहाँ होती थी, मोटरसाइकिल तो होते नहीं थे, अरे लड़का कल कमाएगा तो घर पे तम्पाला गाड़ी खड़ी होगी, ये होगा, ऐसे न जाने कितने ख्वाब देखे थे। लेकिन बनना क्या था मुझे, मेरा अपना संकल्प क्या था, महात्मा बनने का। तो महात्मा किसने बनाया बताओ, मैं ही बना। तो जो भी संसार मिला है वो आपके अपने संकल्प से ही मिला है, आप भूल जाते हो। ये उदाहरण मैं कई बार आपको देता हूं कि एक धनी औरत थी, कौन थी, धनी औरत, किसी बढ़िया बंगले पे झूला डाल करके झूलती है, और गुजरात में तो झूला सामान्य है लेकिन उधर झूला क्या है, अरे महारानी बनी झूले पर 24 घंटे बैठी रहती हैं, झूले से नीचे उतरती नहीं है, मतलब झूला एक बहुत बड़े घर में रहने की क्या है कि निशानी है, कहां पे, उधर हिंदी भाषियों में कहां, दिल्ली यूपी एमपी इन क्षेत्रों में, और गुजरात में तो खाना ना होवे चलेगा लेकिन घर में झूला पक्का होना चाहिए, ये गुजरात की परंपरा है, यही है ना भाई, क्योंकि हम खंभात में रहे हैं ना इसलिए मैं देखता हूं, झोपड़ी सा घर है, टूटा हुआ घर है, एक कमरा है लेकिन झूला पक्का उस घर में होगा ही होगा, मैंने देखा। चलो जो भी है, तो झूला झूलती थी, अपना गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब थे, सामने एक पत्थर तोड़ने वाली औरत थी, सामने क्या थी, पत्थर तोड़ने वाली औरत थी, वो पत्थर तोड़ती है, पसीना पोंछती है, और किधर देखती है बार बार, सेठानी की तरफ, क्या मेरी जिंदगी जिंदगी है क्या, सारी जिंदगी काम करते हुए मरो और शाम को दो रोटी टूटी सी खाओ सूखी सी, इससे अच्छा देखो इसका जीवन कितनी धनी है, नौकर चाकर पसीना बहता नहीं, नौ सब सुख सुविधाएं तैयार, कौन सोचती है, पत्थर तोड़ने वाली। और कहते हैं उसी समय पत्थर तोड़ने वाली के पति टिफिन लेके आया और दोनों उस पत्थर पर बैठ करके एक दूसरे को रोटी खिलाते हैं। अब ये सीन देखती है कौन, कहती मेरी जिंदगी में कोई जिंदगी है क्या, फुर्सती नहीं है मेरे पास बैठने को बात करने को, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं पतिदेव जी के दर्शन हुए। अरे इससे जिंदगी तो बढ़िया किसकी है, उस मजदूरनी की जो इतने प्यार से, मैंने कई बार बताया था, एक बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति जानते हो किसकी सवारी करके फोटो खिंचवाता है, बैलगाड़ी पे बैठ करके, किस पे, बैलगाड़ी पे बैठ के वो क्या खिंचाता है, वो बीएमडब्ल्यू पे बैठ के कभी नहीं फोटो खिंचवाएगा, देख लेना हवाई जहाज पे बैठ के कभी नहीं फोटो खिंचवाएगा, जब कभी राजस्थान में जाएगा ना तो ऊंट पे बैठ करके क्या करेगा, फोटो खिंचवाएगा, और फोटो खिंचवा करके व्हाट्सएप पे डाल देगा, और सारे अपने मित्रों को क्या करेगा, पोस्ट करेगा कि देखो मैं कितनी शान की सवारी करके आया हूं, किस पे बैठ के आया हूं, ऊंट पे बैठ के आया हूं, किस पे बैठा हूं, ऊंच पे बैठ के आया हूं। तो बताओ ऊंच पे बैठना छोटा है कि बड़ा है, उसके मन का एक बहुत बड़ा ख्वाब है कि काश मैं ऊंच पे बैठ के देखूं तो हा? अरे आपको लगता है मलमल के गद्दे सुख देते होंगे, जब यही मलमल के गद्दे उसको जब कांटे चुभने लगते हैं तो जानते हो कहां जाता है, किसी पिकनिक प्लेस में, और कहां सोता है, ए रेत में जाते ना, ए रेत, हम लोग तो कहते हैं कैसे बैठे यहां, कुछ चद्दर बिछाओ दरी बिछाओ ये धूल लग जाएगी, लेकिन जो ये बहुत बड़े घर वाले होते हैं ना वो कहां सोते हैं, एकदम मिट्टी पे अगल बगल रेत में खूब खेलते हैं, तो उधर रेत में भी खेलने का एक क्या है, आनंद है, तो उसका ख्वाब कहां होगा, अरे ये धन ये पद ये प्रतिष्ठा मेरे बंधन का हेतु है, कहां से छूटे, और इन बच्चों की तरह मैं क्या करूं, होगदंग कर सकूं इस रेत में, मौज ले सकूं, तो उसके मन का ख्वाब क्या बनने का है, गरीब बनने का, किसके मन में, लेकिन ये प्यार तो रहे, और कहते दोनों मर गए, कौन मरा, दोनों मर गए, और दोनों मरने के बाद हुआ क्या, सेठानी मरने के बाद ख्वाब क्या देख रही थी, गरीब बनने का ना, तो गरीब के यहां पैदा ले ली, उसके ही अपने संकल्प ने उसको क्या किया, गरीब, फिर काम, और फिर टूटी झोपड़ी, गरीब बनेगा तो सब यही होगा कि नहीं होगा, और मजदूरनी ने ख्वाब देखा था क्या बनने का, तो मरने के बाद क्या बन गई, सेठानी, सेठानी बनी तो महल बनेगा, गाड़ी बनेगा, ड्राइवर होगा, नौकर। लेकिन सेठानी भूल गई कि मैं ही पहले गरीब थी, मैं ही अपने संकल्प से क्या बनी हूं, सेठानी बनी हूं। लेकिन फिर वही सेठानी उस जिंदगी में आकर के दुखी हो जाती है और क्या कहती है, अरे इससे जिंदगी तो बढ़िया किसकी है, उस गरीब की जिंदगी है। देखो कितने प्यास रहते हैं, कितने खेलते हैं, स्वतंत्र हैं, कहीं आवे जाए उनको कोई पूछने वाला है ही नहीं। हमारे लिए तो 10 बंदिशें लगी हुई हैं, ये जिंदगी कोई जिंदगी क्या। तो आपने जो कुछ इस संसार में पाया है वह आप अपने ही संकल्प से ही पाए हुए हो, आप अपने संकल्प का ही एक सपना देख रहे हो, लेकिन खुद भूल जाते हो मैंने कहां ऐसा संकल्प किया था। कहते नहीं कहते ये माताएं संकल्प, महाराज ये औरत शरीर है, बड़ी बंदिशें हैं, क्या करूं। आदमियों की तो बड़ी मौज रहती है, कौन सोचती है, माताएं। ऐसा ना समझना, आप भी हो सकता है शरीर के पूर्व शरीर में क्या रहोगे, पुरुष रहोगे, और क्या कहते होगे, पुरुष बन करके। औरतों की तो बड़ी मौज है, दिन भर घर में बैठी है, अपना दो रोटी बनाएं खाएं, कितना काम ही है, अपना एसी चला करके टीवी देख रही है। आदमी की कितनी झकमारी करनी पड़ती, दिन भर मेहनत करना पड़ता है, किसने सोचा होगा, आपने सोचा होगा। उसी सोच के साथ आपने शरीर का त्याग किया, और त्याग करके जैसी आपकी सोच थी वैसा ही आपने लिंग धारण कर लिया, और फिर रोना शुरू कर दो तो बताओ किसकी गलती, मेरी गलती की आपकी गलती, आप बताओ, आप खुद सोचो, हमें नहीं बताना। हम अपने ही संकल्प से महात्मा बने कि किसी ने बनाया है, मेरा अपना च्वाइस था ना। अब आपको किसी का हाथ पकड़ के घूमते हुए देखूं, रास्ते में आइसक्रीम खाते हुए जाके देखूं, अब मैं रोना शुरू कर दूं, क्या यार मैं नहीं खा सकता, मैं किसी को छू नहीं सकता, तो बताइए मेरी बेवकूफी है कि मेरी समझदारी है। अरे जिस रास्ते का चुनाव आपने खुद किया है उस रास्ते में आपको क्या रहना चाहिए, मौज में रहना चाहिए। ये आपके ही स्वप्न का विस्तार है मेरे भाई, तो सारा विश्व ही किसके स्वप्न का विस्तार है, आपके अपने स्वप्न का विस्तार। मेरे स्वप्न में था प्रेमपुरी तो मैं प्रेमपुरी में आया, यदि स्वप्न में नहीं होता प्रेमपुरी तो नहीं आता, पक्का नहीं आ सकता। मेरे स्वप्न में आप सब थे, संकल्पों की कड़ी में कहीं न कहीं आपकी भी एक गांठ थी, तो वो आप सब इस रूप में उपस्थित हुए हो। चलो आई बात है, तो जब आप इतना बढ़िया सपना देख सकते हो तो वह ईश्वर देख ले वे जो सर्व समझशाली है, तो इसमें आश्चर्य आपको क्यों हो रहा है। इसका नाम है कैमुतिक न्याय, इसका नाम क्या है, कैमुतिक न्याय। जब एक छोटा जीव भी अपने स्वप्न के अनुसार अपना एक संसार बसा सकता है, तो सर्व समर्थशाली अनंत शक्ति से युक्त अलौकिक कर्म करने वाले उस परमात्मा के लिए कहना ही क्या है, वह परमात्मा ही इन सब रूप में परिणत हो जाए, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं। तो कहा भगवान ने इसको कहां दिखाया है, तो कहा एक जगह दिखाया है, मृद भक्षण कुपिताम विकसित वदनाम स्वमातरम वक्त्रे विश्वम अदर्शयत अखिलम किम पुनरथ विश्वरूपे असव। मिट्टी के खाने से, ये आपको कहानी मालूम नहीं मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन की घटना है कि एक दिन बलराम और ग्वाल बाल और श्री कृष्ण एक साथ खेल रहे थे, तो बच्चों का स्वभाव ही होता है क्या खाना, जो मिले सो खाना, मिट्टी ही नहीं जो मिले सो खाना, पता नहीं क्या है आदमी का जन्मजात ही स्वभाव है, उसको सिखाया नहीं जाता, जो मिले कहां डालता है मुंह में। तो कृष्ण ने क्या खाई, मिट्टी खाई, तो बलराम जी तो बड़े भैया थे, बड़ा तो थोड़ा समझदार होता है ना, वो गया शिकायत करने के लिए, मैया मैया कन्हैया ने मिट्टी खाई है। मैया आई डांट के कहा क्यों रे नटखट, तू बड़ा ढूंढ हो गया है, तूने मिट्टी क्यों खाई। जब मिट्टी खा रही माताएं थप्पड़ लगाती हैं, जिसने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं, विश्वास न हो तो अपनी आंखों से मेरा मुख देख लो। कहे ऐसी बात है तो मुख खोल, ऐसे खोला और जैसे मुंह खोला तो उस माता ने उनके मुंह में अनंत कोटि ब्रह्मांड आकाश दिशा पहाड़ द्वीप समुद्र सारी पृथ्वी वायु वैद्युत अग्नि चंद्रमा तारा ज्योति मंडल सब कुछ यहां तक ब्रज अपने आप को भी कहां देखा, उस कन्हैया के छोटे से मुख में देखा। अरे वे ही भगवान जो चित्त मन कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक अनुमान के विषय नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं, जिनकी सत्ता से सबकी प्रतीति हो रही है, जिसका स्वरूप अचिंत्य है, वे ही यदि विश्व रूप में प्रकट हो गए, इसमें आश्चर्य की कोई बात है ही नहीं। कहने का भाव एक दृष्टि आपको भी दे दिया जाए, सारा विश्व देखो पृथ्वी रूप दिखता है। एक दिन मैंने बताया था, पत्ते फल फूल बेंच हम सब क्या दिखते हैं, पृथ्वी रूप दिखते हैं, जली रूप दिखते हैं। तो भगवान ने सिखा दिया, अरे मिट्टी से तो सारा संसार है, इसलिए मिट्टी से इतनी एलर्जी क्यों, इतनी घृणा क्यों। इस तरह से एक प्रकरण पूरा हुआ। अब ज्ञान का प्रकरण आया है, ज्ञान का प्रकरण बहुत बढ़िया भाई। देखो एक पहले है तितिक्षा बताई जाती है, पहले क्या बोली जाती है, तितिक्षा सर्दी गर्मी सहो कहते नहीं कहते हैं, साधक की अवस्था में तितिक्षा है, बाद में तितिक्षा नहीं होती है, बाद में तो सहने का कुछ रहता ही नहीं है, सहने का कुछ रहता नहीं। पहले सहने के लिए इसलिए बोलते हैं ना कि तुम उसी परिस्थिति को हटाने में उलझ गए ना, तो तुम्हें तत्व की उपलब्धि हो नहीं पाएगी, इसलिए उन परिस्थितियों से उलझो ना, उनको सह करके क्या करो, तुम अपने आप को जान लो। और जैसे तुमने अपने आप को जान लिया, तो जैसी भी घटना घटित होगी उस घटना में ईश्वर की कृपा दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, जब कृपा दिखाई देगी तो उसमें सहना नहीं पड़ता है, वह घटना दुख रूप रही नहीं जाती है। अब सर्दी गर्मी भूख प्यास दुख रूप नहीं रह जाती है, वह भी आनंद का एक हेतु बन जाती है, आनंद का एक कारण बन जाती है। तो ज्ञान के बाद जो भी परिस्थिति आती है, जिस भी परिस्थिति में वह रहता है, वह भक्त हर पल उस परमात्मा का अनुग्रह अनुभव करता है और उस परिस्थिति में बड़ा आनंदित होता है, उसको कभी दुख होता नहीं है। इस पे चर्चा हम लोग कब से करेंगे, हाँ लेकिन ये विषय बहुत बढ़िया है, ध्यान देना। और ऐसा नहीं आप लोग भले भगत लोग बोल देवे परमात्मा पक्ष परमात्मा का नाम लो न, तो परमात्मा बड़ा पक्षपात करके आपके कर्मों को काट करके आपको थोड़ा वो दे देगा, तो परमात्मा न्यायाधीश नहीं रह पाएगा, जान लेना। सच्चा न्याय नहीं, परमात्मा सब पे अनुग्रह करता है, बस अनुग्रह करने का तरीका सबके लिए क्या है, अलग अलग है। नहीं, एक को जेल भिजवा करके अनुग्रह करता है, एक को पुरस्कार दिलवा के अनुग्रह करता है, क्योंकि जेल भिजवाने वाले को यदि पुरस्कार दे दिया जाए तो वो और बिगड़ जाएगा, और पुरस्कार पाने वाले को जेल भिजवा दिया जाए तो वो और बिगड़ जाएगा। और सच्चा अनुग्रह परमात्मा ही कर सकता है, क्योंकि वो हमारे अंतर्यामी रूप से बैठ करके हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, वह सब अच्छी तरह से क्या जानता है। इसलिए उसका अनुग्रह कभी आप तो कभी कभी करते हो तो गलत हो जाता है, नहीं गलत हो जाता है, यार मैंने सोचा था इस आदमी को अच्छा, लेकिन ये आदमी तो बड़ा धूर्त निकला मेरा विश्वास, लेकिन परमात्मा पक्का जानता है कि धूर्त है अच्छा है, इसको क्या करके हमें शिक्षा देना है, तो किन किन परिस्थितियों में भगवान हमें कहां कहां शिक्षा दे रहे हैं, इस पे चर्चा हम लोग कब करेंगे, कल से करेंगे। हरिओम तत्।